నమో అరిహంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆయర్యాణం నమో వజ్రాయాణం నమో లోయే సౌవసాహూణం జేణిన కషాయ పాహుడ మణేయనయముజ్జ్వలం అనంతర్థం గాహాహిలివరియం తం గుణహరభడారయం వందే.
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति उर्षव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उद्देश्य के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है. दूसरी पुस्तक जो द्वितीय अर्थानिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें उत्तर प्रकृति की बात देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 103 पर आ गए, 103. अब हम मार्गणाओं में बात देख रहे हैं, नरक गति की और तिरंच गति की बात हुई थी, अभी तिरंचों की बात चल रही थी. वैसे 103 पर नीचे से दूसरी लाइन, पंचेन्द्रिय तिरंच लब्धि अपर्याप्तकों के 26 प्रकृतियों की विभक्ति का सत्वकाल कितना है, तो उसका वो भव ही खुदा भव ग्रहण प्रमाण जगन्य है. तो जगन्य खुदा भव ग्रहण प्रमाण है. सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य काल एक समय है, क्योंकि उद्वेलना करते हुए उसमें उत्पन्न हुआ और एक समय में उद्वेलना समाप्त हुई, तो उसके सत्व एक समय के लिए वहां पाया जाता है. तथा सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है. उत्कृष्ट काल में लगातार लभ्य पर्याप्त होते रहेंगे तो लेना. इसी प्रकार लभ्य पर्याप्त मनुष्यों के भी कहना चाहिए. विशेषण, लभ्य पर्याप्त जीव कदली घात से खुदा भोग ग्रहण तक जीवित रहकर मर जाते हैं. ये लभ्य पर्याप्तकों की जघन्य से उत्कृष्ट आयु के अनेक अलग अलग भेद हो सकते हैं बंद की अपेक्षा, परंतु उनमें भी कदली घात हो सकता है. तो कदली घात करके भी मिनिमम पॉसिबल जितनी हो सकती है उसको खुदा भोग ग्रहण कहा. तो इतने ही काल वो जीवित रहे तो उनकी इतना जो आयु का जघन्य काल है उसको यहाँ ले लिया, अतः उनकी जघन्य आयु खुदा भोग ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट आयु अंतर्मूर्त है. और इसीलिए सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य सत्व काल को छोड़कर शेष सभी प्रकृतियों का, इनका जघन्य काल कितना भी देखा हमने, एक समय, तो अन्य जितनी प्रकृति है उनका जो काल है जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रम से खुदा भोग ग्रहण और अंतर्मूर्त कहा है. तथा उद्वेलना के काल में एक समय शेष रहने पर अविवक्षित गति का जीव, अपनी विवक्षित कौन सी बात चल रही है यहाँ पर, पंचनीय लब्धि पर्याप्त तिरंचों में, तो विवक्षित इसमें आने वाला है, अन्य गति से अन्य पर्याय से इसमें उत्पन्न होने वाला जीव लेना है कि उद्वेलना के काल में एक समय शेष रहने. उद्वेलना कौन सी गति का जीव करता है, चारु गति का, मिथ्या दृष्टि अवस्था में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होती है. तो नरक और तिरंचों में तो लब्धि उसमें से लब्धि पर्याप्तकों में नहीं आएंगे, मनुष्यों में से आएंगे. तिरंच गति कहना है तो मनुष्यों में से इसमें लाना है, और अकेले लब्धि पर्याप्त की बात करना है तो पंचनीय लब्धि पर्याप्त कहेंगे, तो एकेंद्रिय में से भी आएंगे उसको भी, यानी अविवक्षित में से विवक्षित में आएंगे तो काल शुरू हो जाएगा. तो एक समय बाकी है, तब विवक्षित पर्याय में जब उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय बन जाता है. वो अंतिम समय है उद्वेलना का, उसके बाद वो नष्ट होने वाली है, तब उसका एक समय घटित होता है. देवगति में सामान्य देवों के, ये तिरंच गति समाप्त हुई, अभी देवगति में बता रहे, पहले सामान्य घटित करेंगे सामान्य देवों के 28 प्रकृतियों की विभक्ति का सत्व काल सामान्य नारकियों के समान कहना चाहिए। क्या कहा था वहाँ पर 28 की जघन्य और उत्कृष्ट कितना, वहाँ की आयु 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर, ये कथन नारकियों के समान है। विशेष की अपेक्षा भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक प्रत्येक स्थान में 22 प्रकृतियों की विभक्ति काल, विभक्ति का काल उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। तथा सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय, ये नीचे के जीवों को लिया, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान वही पाए जाते हैं तो वो एक समय घटित होगा। अनंतानुबंधी का एक समय कैसे घटित करते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय, विसंयोजना चालू की वो तो अविभक्ति का काल होगा ना, हमने नारके हाँ देखो, हमने नरक में से सातवें नरक को छोड़कर ये बात घोषित की, यानी विसंयोजना मिथ्या तो में आना चाहिए ना, निकालो नरक गति में संयोजन होने पर, देखो देखो संयोजन होकर एक समय में मरना चाहिए। पहले विसंयोजना की है तो अविभक्ति का काल गिना, परंतु फिर वो मिथ्यात्व में गया, उसी जो कहीं जो ग्रेवेक तक कहीं भी किसी भी स्वर्ग में, तो एक समय तक वो संयोजना यानी उसको मिथ्यात्व में आया है और संयोजना चालू हो गई और एक समय में मर गया, ऐसा लिया। 101 में ऊपर का पैराग्राफ, नीचे भी है और ऊपर के पैराग्राफ में कि सातवीं पृथ्वी में तो अंतर्मूर्त तो संयोजना होने पर अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा, उसी के विशेषार्थ में नीचे भी फिर से दोबारा समझाया है। यानी पहले विसंयोजना की थी और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और एक समय में मरा। पेज 101 पर हमने नारकियों में देखा था उसका। तो चतुष्क जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। तथा नौ अन्य दिशाओं से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक प्रत्येक स्थान में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय और 9 कषाय का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। सम्यक का प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल क्रम से एक समय करो, सत्य हुआ एक समय, और अंतर्मूर्त कहना चाहिए। ये एक समय कैसा होगा बोलो देवेंद्र भाई। फिर से पकड़ो उसको, ये अनुदिश और सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक प्रकृति का जघन्य काल एक समय। मैं यानी सम्यक प्रकृति है अभी नष्ट, कृतकृत्य वेदक वहाँ जन्मने वाला, क्योंकि वहाँ तो सारे समय दृष्टि जन्मते, तो ऐसा कोई कृतकृत्य वाला वहाँ जन्मेगा कि जिसके अभी वो शायक होने में एक समय बाकी है। अनंतानुबंधी क्रम से अंतर्मूर्त के, अनंतानुबंधी के लिए अंतर्मूर्त का, यानी अनंतानुबंधी का विभक्ति का काल, यानी अंतर्मूर्त के बाद वो विसंयोजना और सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल। सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकृतियों में कोई वहां क्षय का प्रोसेस होता ही नहीं है, इसलिए वहां अपना उत्कृष्ट वहां स्थिति का प्रमाण। विशेषार्थ नौ अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों के सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी के जघन्य काल को छोड़कर शेष कथन में कोई विशेषता नहीं है। स्लो जाए, क्या नहीं समझे अभी? देखो देखो,
पढ़ नहीं पा रहा हूँ
ठीक, अभी विशेषार्थ पढ़ रहे हैं।
ये अनंतानुबंधी का सात्विक
वहाँ अंतर्मूर्ति इसलिए घटाया था कि सम्यक दृष्टि था और उसने विसंयोजना की थी, विसंयोजना करके दोबारा वो मिथ्यात्व में, तो यहाँ वैसा घटित होगा कि नहीं होगा? यहाँ मिथ्यात्व में जाएंगे ही नहीं, तो ये कैसे घटित हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद जिसने विसंयोजना की है ऐसा जीव लेना, तो वहाँ वो अंतर्मूर्त में पर्याप्त होकर विसंयोजना करेगा ना, तो उसके लिए वो अंतर्मूर्त लिया हुआ शुरू का लेना। सातवें नरक में जो हमने देखा था कि समय दृष्टि था, विसंयोजना करके मिथ्यात्व में गया, संयोजना की, अंतर्मूर्त में तो रहेगा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको मिथ्यात्व में जाना है, फिर आयु बांधेगा मिथ्यात्व में, फिर अंतर्मूर्त जाएगा, फिर मरण होगा, इसलिए वहां उसका संयोजना का काल अंतर्मूर्त घटित किया सातवें नरक में। और अन्य नरकों में एक समय घटित हुआ था, क्योंकि मिथ्यात्व में गया है, संयोजना करते ही मरण हुआ है। अब यहाँ स्वर्गों में कैसा, यानी वो भी अनुदिश और अनुत्तरों में कैसे घटित करना है, तो वहां तो मिथ्यात्व में जा नहीं सकता, तो अंत की ओर नहीं घटित करेंगे। तो जो अनंतानुबंधी की सत्ता सहित वहां आया है और वहां जो विसंयोजना करेगा ऐसा जीव लेना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसमें पढ़ेंगे। कि नौ अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक, यानी अनुदिश और अनुत्तर देवों के सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी के जघन्य काल को छोड़कर शेष कथन में कोई विशेषता नहीं है। शेष कथन क्या है? वह 28 की सत्ता होगी कि नहीं होगी? हो सकती है ना, सभी 28 की सत्ता वाले होंगे क्या, और भी कोई जीव होगा? तो क्षायिक हो गए, तो क्षायिक हो गए तो 21 वाले हो गए, क्षायिक हो गए तो 21 वाले होंगे, और कृतकृत्य वेदक वाले हो गए तो शुरू में हो गए ना, वहाँ जाने के बाद वो क्षायिक हो जाएगा, तो 22 के साथ वहाँ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है।
28 के भी होंगे,
28 के होगी ना, क्यों नहीं, क्योंकि द्वितीय ऑप्शन भी जाते हैं वहाँ पर, और द्वितीय ऑप्शन वो 24 वाले भी हो गए वहाँ पर, विसंयोजना करके वहाँ गए हैं, ऐसे भी हो गए, और अकेले विसंयोजना नहीं, द्वितीय ऑप्शन के बिना भी विसंयोजना वहाँ जाने के भी करते हैं, ऐसे भी चीज है। हाँ, क्यों नहीं देखे, 24 की सत्ता वाला जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं आता है, ऐसा कितने भी सागर में करते हैं। हमने वेदक सम्यक्त का भी काल देखा है ना, 66 सागर तक, तो विसंयोजना करके रहेगा वो कोई उसमें, तो उसमें कोई बाधा नहीं। अभी नरक गति का कथन करते समय जिस प्रकार उसका खुलासा कर आए हैं, उसी प्रकार यहाँ की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर, विशेष स्थिति यानी प्रत्येक स्वर्ग की अपनी अपनी जो कोई स्थिति है उसको ध्यान में रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिए। परंतु अनुदिश से आगे के देवों के एक सम्य दृष्टि गुणस्थान ही होता है, असंयुक्त चौथा ही गुणस्थान है सबको वहां पर। इसलिए इनके सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी के जघन्य काल में विशेषता आ जाती है। जिसके सम्यक प्रकृति की क्षपणा में एक समय शेष है, ऐसा कृतकृत्य वेदक सम्य दृष्टि मनुष्य जब नव अनुदिश आदि में उत्पन्न होता है, तो उसके सम्यक प्रकृति का जघन्य काल एक समय भी बन जाता है। किसी का कृतकृत्य वेदक का अंतर्मुहूर्त भी बन सकता है, और ऑर्डिनरी वेदक है उसका तो पूरा यानी द्वितीय ऑप्शन सिर के साथ गया है, फिर वेदक हुआ है, कोई वेदक के साथ वहां उत्पन्न हुआ है, तो उसके तो पूरे जितने 33 आकर है उसका, जो अपने अपने अनुदिश का जितनी स्थिति और अनुत्तर की है उतनी समझना पड़ेगी। तथा कोई वेदक सम्य दृष्टि अनुदिश आदि में उत्पन्न हुआ, ये पहले तो कृतकृत्य की बात थी, अब यहाँ वेदक सम्य दृष्टि अनुदिश में उत्पन्न हुआ आदि में, और वहां उसने अनंतानुबंधी के अंतर्मूर्त काल के भीतर विसंयोजना कर दी। ने इसे सोचा था ना कि वहां उत्पन्न होने के बाद उसने विसंयोजना की अंतर्मूर्त के अंदर अंदर, तो उसके अनंतानुबंधी का जघन्य काल अंतर्मूर्त बन जाता है। अब आगे की इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एकेंद्रियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति का, विभक्ति यानी सत्ता का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लोकम के असंख्यातवे भाग है। ये कैसा घटित करना है? क्योंकि जो सादी मिथ्यादृष्टि 28 की सत्ता वाला है तो पूर्व भव में ही उसने उद्वेलना कर दी है, अन्य इंद्रियों वाला था, अब यह इंद्रिय मार्गणा है ना, अभी गति की बात नहीं है, अन्य इंद्रियों वालों में से इसमें आ गया, एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ, उद्वेलना चल ही रही थी, एक समय की बाकी थी, यहां आते ही वो उद्वेलना कर दी तो उसकी सत्ता समाप्त हो। तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय घटित होगा, और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्रे भाग, एक इंद्रियों का उत्कृष्ट काल तो हमने बहुत देखा था, कितना देखा था, असंख्यात रूप जल करो, और यहाँ कितना कह रहे हैं पल्ले के, हाँ क्यों, हाँ हाँ किसकी ऐसा कहना, उसकी स्थिति नहीं कहना, स्थिति तो अंत थोड़ा कोड़ी थी ना, ऐसा लेना है कि उद्वेलना के लिए अधिक से अधिक समय कितना लगता है, क्योंकि वो मिथ्यात्व में गया और एक इंद्रियों में आ गया, पहले उसके कुछ काल नहीं बीत गया ज्यादा, उसने उद्वेलना अभी भी शुरू की मान लेते हैं, तो उसका तो पूरा ही काल लेगा पल्ले का असंख्या का, तो इतनी उसकी हो गई। तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल, यानी इनके अलावा जो अन्य प्रकृतियां हैं उनका जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, एक इंद्रियों में जो क्षुद्र भव है उस प्रमाण, उसका जघन्य काल, इन दो को छोड़कर अन्य शेष की बात चल रही है, क्योंकि उनमें तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाले। एक इंद्रिय अवस्था में जैसे हमने अन्य जीवों में देखा था, जहां चौथा गुणस्थान पॉसिबल है देवों में नारकियों में, वहां तो वो अनंतानुबंधी को भी लिया था साथ, अब उनकी बात यहां नहीं कहते। तो शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, कि एक इंद्रियों का उत्कृष्ट काल, एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल। अब कहेंगे अनादि से है ना उसमें कोई कोई चीज, यहां सादी लेना ना, सादी शांत काल लेना, क्योंकि एक इंद्रिय जब कहेंगे तो अन्य इंद्रियों वालों में से इसमें आया हुआ जीव लेंगे और उसका उत्कृष्ट काल गिनना। एक इंद्रियों की शुरुआत कब हुई? यहाँ मार्गणा की शादी बताना, आप घोटाला कर रहे हैं। एक इंद्रियों में आया तब से काल गिनो उसका, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रिय कहीं में से किसी में से उसमें आया तो उसका काल लेना है। ये अन्य 26 प्रकृतियों की सत्ता की बात कर रहे हैं, यहाँ सम्यक को है कि नहीं उसकी बात नहीं चल रही। अनादि भी होगा सादि भी होगा, शेष 26 की बात चल रही है।
अन्य इंद्रियों में चला गया है और वापस आया तो उसका असंख्यात,
असंख्यात खुद बल परिवर्तन कब से अन्य इंद्रियों में से इसमें आया और लगातार एक इंद्रियों में रहा तो उसका असंख्यात खुद बल परिवर्तन काल है, उसका ही उतना ही काल 26 प्रकृतियों का घटित होता। शुरू में सम्यक प्रकृति किसके होगी तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में तो उज्ज्वल न होने वाली है। तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व हो या न हो, अन्य 26 की बात है, वो कितने काल तक रहेगी? तो जितना वहां रहने का उत्कृष्ट काल है उतने काल तक रहेगी। तो यहाँ 26 की बात अनादि अनादि लेना, उसमें अनादि लेना। तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन अन्य 26 प्रकृतियों की बात है यहाँ। इसी प्रकार बादर एक इंद्रियों के जानना चाहिए, बादर एक इंद्रियों का भी उसमें भी जघन्य काल और उत्कृष्ट काल गठित करेंगे। इतनी विशेषता है कि इनके 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल, ये जो बादर एक इंद्रियों का उत्कृष्ट काल है उसको यहाँ ले लीजिए, वो कितना होगा? अंगुल के असंख्यात विभाग है, जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी हमने बहुत बार देखा था। अंगुल का असंख्यात का भाग जब कहते हम तो ये तो क्षेत्र की अपेक्षा काल समझाया, तो हमें उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की सागरों में बताओ तो असंख्यात अवसर्पिणी होते, यानी असंख्यात बार 20 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना काल
जो बताया है। हाँ, अंगुल का असंख्यात का भाग, अभी 102 नंबर का जो पेज है उसमें विशेषार्थ दूसरी लाइन के एंड,
विशेषार्थ के दूसरी लाइन के
सामान्य से तेज गति में रहने का जगने का बुढ़ा को भ्रम और उत्कृष्ट का भाव लेते असंख्यात के भाग के जितने समय है तो ये दोनों ही एक अलग
है। नहीं नहीं नहीं, ये अंगुल के असंख्यात भाग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अभी हमने जो देखा ना ऊपर कि उत्कृष्ट काल अनंत है जिसका प्रमाण असंख्यात खुदगल परिवर्तन है, उसका उसका संबंध है।
ये जो काल बताया वो और ये जो काल बताया है वो दोनों ही काल एक ही है या
नहीं? नहीं,
वो आज वाला ज्यादा इससे बहुत ज्यादा,
वो वाला अनंत असंख्यात खुदगल परिवर्तन है और अभी हम जो देख रहे हैं वो कितना देख रहे हैं? असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी देख रहे हैं। देखो ये जो असंख्य वहाँ असंख्यात का प्रमाण बताया कितने असंख्यात है, हावली के असंख्यात वे भाग जितने असंख्यात कितने परिवर्तन करना है उसके, तो असंख्यात वो असंख्यात का प्रमाण क्या है? हावली के असंख्यात वे भाग जितने पुद्गल परिवर्तन करने हैं उसके। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों को, बादर एक इंद्रिय सामान्य से बात की थी तो यह असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बता दिया। अब बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों की सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, क्योंकि बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों में ही घूमता रहे तो संख्यात हजार वर्ष तक रहता है, तो उसने काल में तो उद्वेलना समाप्त नहीं होगी, तो किसी जीव के उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्षों तक समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व की सत्ता रहेगी। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों के शेष 26 प्रकृतियों का, अभी उनकी दो की बात भूल जाओ, अभी अन्य शेष की बात चल रही है, काल भी समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व के काल के समान जानना चाहिए। जब हमने ऊपर देखा था तो उन दो प्रकृति की अधिक से अधिक यानी पल्ले के असंख्या पे भाग, परंतु वहां रहने का लंबा काल है उनका, इसलिए अन्य प्रकृतियों का काल अलग हो सकता है जितना लंबा था। अब यहाँ क्या कहते हैं, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों में ही कोई जीव रहे अधिक से अधिक तो संख्यात हजार वर्ष ही रह सकता है, तो उतने काल तक उनके समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व भी रह सकता है, उद्वेलना साधना हो रही है वहाँ पर, परंतु ज्वेलना पूरी नहीं होगी उतने काल में। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय न होकर अंतर्मूर्त है। किसका जघन्य काल? अभी हमने बांध रेखे में पर्याप्तों में समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय घटित करके देखा और 26 प्रकृतियों की बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जब कहते हैं, अपने कहाँ चल रही बात जरा फिर पढ़ो। जहाँ अवसर्पणी उत्सर्पणी हो गए ना, वो तो उसमें कॉमन लिया था पर्याप्त पर्याप्त। अभी अकेले पर्याप्तों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? कितनी है अधिक से अधिक संख्या कर? एक आयु नहीं, लगातार बादर पर्याप्तों में एकेंद्रीय पर्याप्तों में घूमता रहे तो संख्या 1000 वर्ष। अब यहाँ 26 प्रकृतियों की बात चल रही है, तो 26 प्रकृतियों की कम से कम कितनी होगी? क्योंकि इनकी आयु कितनी है पर्याप्तों की? जघन्य आयु अंतर्मुख, तो यहाँ एक समय नहीं घटित हो सकता, क्योंकि कोई बादर ही के लिए एक समय में हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी जघन्य आयु कितनी है? एक अंतर्मुख। इसलिए क्या कहते हैं, ये शेष प्रकृतियों के लिए जघन्य काल एक समय न होकर अंतर्मूर्त है। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, ऐसा ही समझना कि उद्वेलना पूरी होते होते अभी अंतिम समय में उसमें जन्म लिया है सूक्ष्म में। अपर्याप्त की बात करें, बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त और शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुदा भवग्रहण प्रमाण है। जब हम पर्याप्तों में जघन्य काल घटित करते हैं तो अंतर्मुख, और अपर्याप्तों में जघन्य काल खुदा भवग्रहण, तथा सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। किसकी बात चल रही थी? अपर्याप्तों। तो अपर्याप्तों में लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए उत्कृष्ट काल सबका मिलकर भी अंतर्मूर्त। अब ये तो एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय की बात हो गई, पर्याप्तों में भी और अपर्याप्तों में। अब सूक्ष्म एकेंद्रीय, जब सूक्ष्म एकेंद्रीय इतना ही कहते हैं तो सामान्य से ले, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, ऐसा ही क्योंकि अन्यत्र उद्वेलना करके अभी यहाँ आया है, और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों में है वो। अकेला पर्याप्त या अकेला अपर्याप्त नहीं लेना, तथा शेष प्रकृतियों का जघन्य काल खुदा भव ग्रहण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। ये असंख्यात लोक किसका काल है? सूक्ष्म में रहने का उत्कृष्ट काल। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलकर, अकेले पर्याप्त में रहेगा अकेले अपर्याप्त में रहेगा तो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहेगा, पर्याप्त अपर्याप्त करता रहेगा सूक्ष्म में ही लगातार रहा तो। असंख्यात लोक हमने अभी अभी देखा था, अंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है, तो अंगुल कितना बड़ा होगा लोक कितना बड़ा होगा, और ऐसे असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समय उतना काल कितना बड़ा होगा, ये सूक्ष्म में लगातार रहने का काल। अढ़ाई तो इतर निगोद के लिए, ढाई पुद्गल परिवर्तन हो इतर निगोद के लिए, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन सभी एकेंद्रियों में मिलकर। बादर एकेंद्रियों में कितना देखा? अंगुल का असंख्यात आभार, और सूक्ष्म एकेंद्रियों में असंख्यात लोक। समय बहुओं का सवाल नहीं है, वो काल गिन रहे हैं ना असंख्यात लोग।
जो इतर निगुण पर ढाई है वो उनके लिए असंख्यात पुद्गल बड़ा होता है।
अकेले निगोद में, इतर निगोद में अकेले ढाई पुद्गल परिवर्तन, लगातार निगोद 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 होगा, और लगातार निगोद ने इतर निगोद का है ना, अन्य पर्याय धारण करके अभी निगोद में आया है, तो लगातार वो ढाई पुद्गल परिवर्तन। और सभी एकेंद्रियों में, निगोद में भी जावे बीच बीच में, फिर अन्य एकेंद्रियों में भी जन्मे, तो ऐसा काल कितना है? तो असंख्यात पुद्गल पर्व। मोक्षमार्ग प्रकाशित नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं। एकेंद्रियों में जाएगा तो इसका प्रमाण नहीं है, कोई हिसाब नहीं है कहाँ कितना काल बिताएगा। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, अभी अकेले पर्याप्त उनकी बात है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख। अकेले पर्याप्तों में घूमेगा तो भी अंतर्मुख, अकेले अपर्याप्तों में घूमेगा तो भी अंतर्मुख, परंतु ये अंतर्मुख होते हुए भी एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय में ही रहा, वो पर्याप्त पर्याप्त करता रहे बीच बीच में, तो असंख्यात लोग इतना काल बीतेगा। तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि पर्याप्त लिए ना, सूक्ष्म है फिर भी पर्याप्त है, तो उनकी जघन्य भी आयु अंतर्मूर्त, और लगातार पर्याप्त भव कर रहे हैं तो भी अधिक से अधिक अंतर्मूर्त। सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त को में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, सब जगह इनका जघन्य काल एक समय घटित हो सकता है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, लगातार लब्धि अपर्याप्तकों में सूक्ष्मों में जन्मता रहे तो भी अंतर्मूर्त ही हो गए इसके लिए। तथा शेष प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल यानी लगातार सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तकों में जन्मता रहे विशेषा वहां, सॉरी यहां लिखा है ना, यहाँ एकेंद्रियों में और उनके भेद प्रभेदों में 28 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल बतलाया गया। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां एकेंद्रियों के पाई भी जाती और नहीं भी पाई जाती, तो पाई जाती है ऐसा कहेंगे तो कौन से जीवों के पाए जाएंगे? सादी मिथ्या दृष्टि को पाई जाएगी, तो कहते नहीं भी पाई जाएगी मैं किसको लेना, अनादि को भी लेना और शादी जिसके उद्वेलना पूरी हुई उसको भी ले सकते, परंतु उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल वो इतना घटित नहीं होगा, क्योंकि वो अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक काल नहीं घटकेगा। जब हमें उत्कृष्ट काल घटित करना है तो वहां तो अनादि मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा 26 प्रकृतियों की सत्ता वाले, जिनके इनका उद्वेलना काल पूरा नहीं हुआ है उनकी पाई जाती है, और जिनके उद्वेलना काल पूरा हो गया है उनके नहीं पाई जाती है, या जिसने कभी वो समय तो प्राप्त ही नहीं किया था उसके भी वो। अतः इनके जघन्य और उत्कृष्ट काल को छोड़कर, यानी ये तो जघन्य और उत्कृष्ट किसके लिए होगा? उद्वेलना करने वाले। समय प्रकृति और समय मिथ्या तो किसके होगा? शादी वाले के होंगे, शादी मिथ्या वाले। तो उन दो प्रकृतियों में जघन्य और उत्कृष्ट काल बताएंगे, तो उत्कृष्ट कहीं भी घटित करना है तो या तो भव बड़ा होगा तो पल्ले के असंख्यात वे भाव इतना करेंगे, अकेले एकेंद्रियों की बात करनी है तो एकेंद्रियों में रहने का काल भले असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, परंतु तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अधिक से अधिक काल कितना होगा? पल्ले का असंख्यात होगा। अब अन्य 26 की बात चल रही, दो का जघन्य और उत्कृष्ट बता दिया, जघन्य सब जगह एक समय होता है और उत्कृष्ट जहां पल्ले का असंख्यात भाग वहां पॉसिबल होगा तो वहां बता दें, अन्यथा वहां रहने का उत्कृष्ट काल बताए। अतः इनके जघन्य उत्कृष्ट काल को छोड़कर शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल, अभी अन्य 26 की बात है, यहां इन दो को छोड़ना है तो जघन्य कितना होगा? उस वहां जहां पॉसिबल है वो क्षुद्र भव पर्याप्तों में जघन्य आयु, और उत्कृष्ट लगातार उसमें रहने का उत्कृष्ट काल। जितने एकेंद्रियों के भेद प्रभेद देखे थे उसमें यही बात हुई, तो एकेंद्रियों की जिस पर्याय में लगातार जघन्य और उत्कृष्ट रूप से जितने काल तक एक जीव के रहने का नियम है उतना है। एक जीव के कहना जरूरी है क्योंकि अन्य अन्य जीव तो हमेशा ही होंगे, सदा काल होंगे, जो ऊपर बतलाया ही है। तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्यकार जो एक समय कहा है उसका कारण यह है कि जिसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में एक समय शेष रह गया है, ऐसा कोई जीव जब मरकर विवक्षित एकेंद्रिय में उत्पन्न होता है, विवक्षित एकेंद्रिय जो जिसकी हम बात करें बादर की है, पर्याप्त की है कि अपर्याप्त की है कि सूक्ष्म की है, होता है तब उसके उक्त दोनों प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय बन जाता है, तथा जिन एकेंद्रियों का उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग से अधिक है उनके इन दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग होता है, क्योंकि इतने काल के भीतर इन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है, उद्वेलना के लिए इतना ही काल लगता है, और जिन एकेंद्रियों का उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग के भीतर है जैसे बादर एकेंद्रिय पर्याप्त संख्यात हजार है, इतने काल तक उन दो प्रकृतियों के भी हम काल उत्कृष्ट काल करेंगे, उनके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल भी उतना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना होने के पहले ही वह पर्याय बदल जाते हैं। समझ में आया? अब आगे विकलेंद्रियों में इंद्रिय मार्गणा चल रही है, अब विकलेंद्रियों की बात कर रहे हैं,
मतलब पल्ले के संख्या में दो पर्याय हो सकती है,
यहाँ कहते अन्य पर्याय ने बादर में से सूक्ष्म में चला जाता है, हम यदि बादर की बात कर रहे हैं तो वो पर्याय ही बदल जाती है, जैसे बादर एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, संख्या हजार वर्ष पर्याप्त में, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में संख्या हजार वर्ष, तब तक तो वो तो दोनों प्रकृतियां बनी रहेगी, क्योंकि वो काल पल्ले के असंख्यात भाग से छोटा है, तो इनके पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल उतना ही है, सूक्ष्म में चले जाएंगे तो हम कहेंगे बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कितना है, संख्यात हजार वर्ष है कहेंगे, उस पर्याय की कितनी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है एक जीव के लगातार उस पर्याय में जन्म मरण करने का काल लेना, विकलेंद्रियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, ऐसे ही लेना कि अन्यत्र उद्वेलना करके आया है और एक समय में उद्वेलना पूरी हुई तो एक समय, और शेष प्रकृतियों का जघन्य काल खुदा भव ग्रहण प्रमाण है, अन्य प्रकृतियों की बात, अन्य जो 26 है उसकी बात चल रही, तथा सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, विकलेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, तो इसलिए सभी का उतना दे दिया। इसी प्रकार विकलेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उक्त प्रकृतियों का काल जानना चाहिए, पर्याप्तों में भी ये संख्यात हजार है, वो तो पर्याप्तों की अपेक्षा ही घटित होगा, अपर्याप्तों में लगातार रहने का तो अंतर्मूर्त होता है, जब सामान्य विकलेंद्रिय कहेंगे तो भी संख्यात हजार वर्ष, और अपर्याप्तों को अकेले बात करेंगे तो भी संख्यात हजार वर्ष, और अकेले अपर्याप्तों की बात करेंगे तो अभी बताएंगे अंतर्मूर्त। इसी प्रकार विकलेंद्रिय पर्याप्त जीवन की कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुदा भव ग्रहण प्रमाण न होकर अंतर्मूर्त है, किसके लिए, विकलेंद्रिय पर्याप्तों के लिए, जब विकलेंद्रिय सामान्य की बात करेंगे तो जघन्य काल खुदा भव ग्रहण करेंगे अन्य प्रकृतियों के बारे में, और यहां पर पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त करेंगे जघन्य काल, विकलेंद्रिय पर्याप्तकों के समान विकलेंद्रिय अपर्याप्तकों के उक्त प्रकृतियों का काल जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त न होकर खुदा भव ग्रहण प्रमाण है, और 28 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्यों, लगातार अपर्याप्तकों में जन्मने का काल कितना है अंतर्मूर्त, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, और वहां पर्याप्तों में उत्कृष्ट काल संख्या हजार वर्ष का है, विशेषा द्वीन्द्रिय की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष, अभी हरेक की अलग अलग बता रहे हैं, 49 49 49 नहीं नहीं 49 नहीं कह रही, 49 कह रही। वीन्द्रिय की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष, तीन्द्रिय की 49 दिन रात, और चतुर्द्रिय की, चतुर इंद्रिय की 6 महीना। ये एक भव की बात चल रही है। अब यदि कोई अन्य इंद्रिय वाला जीव विकलत्र, ये त्रय तीनों को ले लिया, वीन्द्रिय तीन्द्रिय चतुर इंद्रिय, विकलत्रय में उत्पन्न होकर निरंतर इसी विकलत्रय पर्याय में उत्पन्न होता रहे और मरता रहे, तो संख्या 1000 वर्ष तक वह विकलत्रय पर्याय में रह सकता है। इसी अपेक्षा से ऊपर सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयों के सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष का है। अन्य प्रकृतियों का ये इसका भी हो सकता है ना, संख्या 1000, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का भी उतना ही होगा। 28 के 28 के लिए उत्कृष्ट काल कितना होगा, संख्या 1000, क्योंकि द्विंद्रिय पर्याप्तकों में रहने का उत्कृष्ट काल या द्विंद्रियों में भी सामान्य से रहने का उत्कृष्ट काल वो संख्या 1000 वर्ष। तथा जघन्य काल कहते समय सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का एक समय, क्योंकि अन्यत्र उद्वेलना करके एक समय बाकी है तो एक समय, और 26 प्रकृतियों का अन्य 26, अभी ये दो की बात छोड़ दो, अन्य के लिए जघन्य काल कहना है तो जब सामान्य की बात करेंगे तो खुद का, और जब पर्याप्तों की करेंगे तो अंतर्गत। तो सामान्य विकलत्रयों के खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण और पर्याप्त विकलत्रयों के अंतर्मूर्त कहने का कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना में एक समय शेष रहने पर अन्य इंद्रिय वाला जीव, क्योंकि विकलत्रय में हमने शुरू करना है तो अन्य इंद्रिय वाला था, पंचेंद्रिय था या एक इंद्रिय था, अब वो विकलत्रय में आ गया। यदि विवक्षित विकलत्रय में उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय बन जाता है, तथा सामान्य विकलत्रय का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण है। जब सामान्य कहते तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है, तो उसमें मिनिमम किसकी है तो खुद्दाभव ग्रहण, और पर्याप्त विकलत्रय का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अतः इन दोनों के शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल क्रम से खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण ये सामान्य के लिए, और अंतर्मूर्त पर्याप्तों की जघन्य आयु घटित होता है। अब भी लब्धि अपर्याप्त विकलत्रय, ये अपर्याप्त बता ही दिए, तो उसमें रहे जघन्य कितना होगा, खुद्दा भोगना और उत्कृष्ट अंतर। तो लब्धि अपर्याप्त विकलत्रय का जघन्य काल खुद्दा भोग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अतः इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दा भोग्रहण प्रमाण और सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। रहित समय प्रकृति और समय विख्यातों के जघन्य काल की बात, सो ऊपर जिस प्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलत्रय के इनके जघन्य काल एक समय का खुलासा किया है, उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियों के जघन्य काल का खुलासा कर लेना चाहिए। यानी कोई विकलत्रय लब्ध्य पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, अन्यत्र उद्वेलना करके अभी इसमें आया है, एक समय उद्वेलना का बाकी है, उन दो प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय घटित हो सकता है। उत्कृष्ट काल कितना होगा, लब्धि अपर्याप्त विकलेंद्रिय अंतर्मूर्त, क्योंकि सभी भव मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होते हैं। पंचेंद्रिय अभी एकेंद्रिय हो गए, विकलेंद्रिय हो गए। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में 26 प्रकृतियों का जघन्य काल क्रम से खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त है। पंचेंद्रिय सामान्य के लिए खुद्दा भव ग्रहण और पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए अंतर्मूर्त, ये जघन्य काल की बात। तथा दोनों के 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर और 100 सागर पृथक्त्व है। जब पंचेंद्रिय जनरल बात करते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त मिलकर, तो 1000 सागर में पूर्व कोटि पृथक को मिला देना, तो पंचेंद्रियों का काल। हम जब त्रस का काल कहते हैं ना, तो पंचेंद्रिय विकलेंद्रिय सब मिलकर कहते हैं, वो कितना होता है, साधिक 2000 सागर, दोनों के पर्याप्त पर्याप्त सब ले लेंगे, और अकेला त्रस पर्याप्त लेंगे तो 2000 सागर। यहाँ पंचेंद्रिय की बात चल रही है, विकलेंद्रिय को छोड़कर, तो सामान्य से पंचेंद्रिय कहेंगे तो 1000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक कर, और अकेले पंचेंद्रिय पर्याप्त लेंगे तो 100 सागर पृथक पृथक 100 सागर, 10 सागर हो जाएंगे तो 1000 हो जाते ना, 10 सौ सागर होंगे तो 1000 हो गए, तो उससे नीचे लेना है आपने उस दिन में होता है ना, पृथक्व 100 कहाँ, 10 सौ कहते तो 1000 सागर हो जाते, तो उससे नीचे की संख्या बतानी है, 7-8 कहते हैं, कहीं 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 3-9 कहते हैं, ये जहाँ जो पृथक्व की वैल्यू होगी वो है। हमने देखा था ना, वो तो 95 के लिए भी पृथक्व का है, तो जहाँ जो अपेक्षा होगी वहाँ उसको लेना, पृथक्व ने अधिक इतनी संख्या होगी। तथा दोनों के समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, ये एक समय तो कहीं भी घटित करना है इन दो प्रकृतियों का, तो उद्वेलना करके वहां आया हुआ जीव समय। और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के 3 असंख्यात वे भागों से अधिक 132 सागर हैं। हमने देखा था कि उद्वेलना का काल कितना हो सकता है, अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात वे भाग, तो पहले किसी जीव ने समय तो प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया और उद्वेलना चालू की, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल लगता है उसको, तो उसका अंतिम समय बाकी है, तो उपांत समय में फिर उसने औक्षणिक समय को प्राप्त किया, तो दोबारा उसके वो प्रकृतियां तैयार हो, फिर वहां 66 सागर तक वेदक काल बिताया उसने, औक्षणिक के बाद वेदक हो जाएगा 66 सागर तक, फिर बाद में मिथ्यात्व में आ गया, फिर उद्वेलना करने लगा, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल बिताया उसने, फिर एक समय पहले उसने समय को प्राप्त किया, फिर 66 सागर बिताया और फिर मिथ्या तो में आया, फिर और पल्ले का असंख्या था, इसलिए 3 बार लिया। पल्लोपम के 3 असंख्यात वे भागों से अधिक 132 सागर। शंका, हाँ, ऊपर जो 26 प्रकृतियां कही है, एक कहीं है वो नहीं, कही है, ही के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, ही के ऊपर बिंदी लगाते तो क्या अर्थ होता है, हाँ? नहीं, कहीं के लिए मैं पूछ रही हूँ, है के लिए नहीं, है में बिंदी लगाते तो बहुवचन होता है, देखो देखो वही और वही के लिए क्या है, वही यानी वह ही और वही यानी उसी जगह पर, ऐसे कही कहीं तो कही है मैं बताया है, और कहीं है ने कहीं ना कहीं है, ऐसा वो प्लेस बताता है, जैसे वहां का वही होता है ना, तो कहां पाया जाता है, तो कहां का कहीं हो जाता है। तो 26 प्रकृतियां कही है, उनमें से अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं कहा, ये सर्वत्र जघन्य एक समय क्यों नहीं घटित किया है, नहीं, क्योंकि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो उपशम समय दृष्टि जीव है, वह एक समय तक सासाधन गुणस्थान के साथ रहकर और दूसरे समय में ही मरकर एकेंद्रियों में नहीं उत्पन्न होता, क्या कहते हैं, वो अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं कहा, क्योंकि जघन्य काल कब होगा, अन्य जीवों में घटित करते हैं, अन्य जीवों में हम एक समय कैसे घटित कर सकते हैं, देखो इन्हें सासाधन में आया, औक्षमिक समय दृष्टि सासाधन में आया, सत्ता तो है उसकी, पर कौन सा लिया है,
देखो 24 की सत्ता हो जाएगा,
24 की सत्ता वाला जीव
चार अनंतानुगति नहीं है उसकी,
दूसरे गुण स्थान में आया है
24
की सत्ता वाला। देखो
तो वो साक्षात में जाएगा ही,
बराबर है। 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो उपशम समय दृष्टि जीव है चौबीस की सत्ता वाला उपशम समय दृष्टि यानी द्वितीय उपशम हो सकता है ना, परंतु सत्ता नहीं तो वो दूसरे में कैसे आए। आने के लिए उदय, उदय के लिए
आने वाले उदय होता है ये तभी तो निकालो मैं पैसे कहीं भी
नहीं। ये तो है क्योंकि सासादन गुणस्थान में जो मरता है ना, तो सासादन में कितने काल तक रहकर कहाँ मरकर कहाँ जाता है उसके नियम। सात दन के शुरू में मरेगा तो उदय में जाएगा, फिर और कुछ काल के बाद मरेगा तो मनुष्य में जाएगा, और फिर तीरंजन और नरक में कभी जाएगा, जाता ही। क्या कहते हैं, नहीं क्योंकि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो उपशम समय दृष्टि जीव है वह एक समय तक सासादन गुणस्थान के साथ रहकर और दूसरे समय में ही मरकर एकेंद्रियों में नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के अनंतानुबंधी चतुष्क का जगन्य काल एक समय नहीं कहा। शंका, यह किस प्रमाण से जानना जाता है कि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव एक समय सासादन गुण स्थान में रहकर और दूसरे समय में मरकर एकेंद्रियों में नहीं उत्पन्न होता है, परम गुरु के उपदेश से जाना जाता है। अतः 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला उपशम समय दृष्टि जीव जब अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ अंतर्मूर्त काल तक रह लेता है तभी वह मरकर एकेंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अथवा जिन आचार्यों के मत से सासादन समय दृष्टि जीव एकेंद्रियादि सभी पर्यायों में उत्पन्न होता है, उनके मत से पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के अनंतानुबंधी चतुष्क का एक समय जघन्य काल कहना चाहिए। चतुष्क का जघन्य काल कैसे हो, एक समय कैसे होता है, ये विशेषार्थ में हम पढ़ेंगे। ये आगे का पढ़ लेते हैं। विशेष की अपेक्षा पंचेंद्रिय तिर्यंश का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है, ये पंचेंद्रिय तिर्यंश ने सामान्य से, और पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश तथा योनिमति तिर्यंश का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वे पर्याप्त जीव है, उनकी जघन्य आयु अंतर्मूर्त तो होगी। लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। नहीं होगा क्या, दूसरे गुणस्थान की बात है और प्रत्याख्यान अनुसरूप होना
नहीं।
अच्छा, प्रथम ऑप्शन वाले ने भी विसंयोजना यदि कर दी है,
अगर नहीं किया तो होगा ऐसा क्या, उपशम समय दृष्टि जीव जो एक अंतर्मूर्त अनंत जो उपशम आया है, वापिस जब उसका उदय आएगा तभी दूसरे गुणस्थान में आएगा,
वही तो उदय आएगा तभी आएगा, परंतु जो विसंयोजना करता है उसकी सत्ता में परमाणु ही नहीं है तो उसका उदय कैसे आएगा।
विसंयोजना की बात है, जब परमोक्ष जो समय दृष्टि जीव है उसका तो विसंयोजना नहीं
है, उसका जब उदय आएगा तभी साधन में आया। तो चौबीस की सत्ता वाले की बात चल रही है, उपशम वाले की कितनी सत्ता है, अट्ठाईस हो जाती है ना, उपशम वाले की अट्ठाईस सत्ता है, चौबीस की बात कर रहे हैं हम। यानी दो मत उसके बारे में कि सांसाधन में मरकर सांसाधन के साथ वो एकेंद्रियों में जावे, ऐसा भी हमने देखा ना, पर्याप्तों में उत्पन्न हो सकता है, ऐसे दो मत है। पर यहाँ तो 24 की बात क्यों निकाली बीच में, यहाँ 24 की बात बीच में
कि शासन व्यवस्था में दूसरे फॉर्म में उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक मुद्दा तो पड़ा था उत्तर के शासन में आएगा मरने से बाद में, पहले वो मिथ्या दृष्टि होकर नहीं मरेगा, मिथ्या दृष्टि में जाकर मरेगा वो था।
तो यहाँ तो ये एक इंद्रियों के इंद्रिय की मार्गणा की बात चल रही है ना यहाँ पर, वो एक समय के लिए सांसाधन में रहा उसकी बात नहीं हो रही है, गुणस्थानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय पर्याय की बात चल रही है, क्योंकि बाद में तो उसके लगातार अनंतानुबंधी की विभक्ति रहेगी ही ना, तो काल तो उसका जितना होगा उतना होगा। अभी ये विशेषार्थ नहीं हमको समझ में आएगा, अभी ये तो विशेषार्थ के ऊपर तीसरी लाइन वो पढ़ रहे, लब्ध्य पर्याप्त पंचेंद्रियों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये तो समझ सकते हैं, लगातार उसमें रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है और जघन्य एक समय अन्य पर्याय में उद्वेलना करके यहाँ पर आया है, तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। विशेषार्थ, सामान्य पंचेंद्रिय का पंचेंद्रिय पर्याय में रहने का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथत्व से अधिक हजार सागर है। पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय में रहने निरंतर रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी उसका एक भव गिना, और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथत्व है, तथा लब्ध्य पर्याप्त पंचेंद्रिय का लब्धि अपर्याप्त पर्याय में निरंतर रहने का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसलिए इन जीवों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर, क्यों छोड़ा, उनमें एक समय घटित होता है इसलिए उनको छोड़कर शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल उन जीवों की उस पर्याय में निरंतर रहने की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा। यहाँ यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों के अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय भी संभव है, पर उसे यहाँ क्यों नहीं कहा। इस शंका का समाधान वीरसेन स्वामी ने दो प्रकार से किया है। पहले तो यह बताया है कि जिस जीव ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, ऐसा उपशम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुणस्थान में एक समय रहकर और दूसरे समय में मरकर एकेंद्रियों में नहीं उत्पन्न होता, इसलिए अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय नहीं बनता। हमने नरक में कैसा घटित किया था पहले उसको सोचते हैं, या तीर्यंचों में नहीं, कोई जीव जो है सम्यक दृष्टि है उसने विसंयोजना की, अभी उसका सत्व नहीं है, ऐसा जो मिथ्यात्व में आया तो मिथ्यात्व में आकर एक समय में मरा, अब यहाँ क्या ले रहे वो सासाधन वाला बीच में, उपशम समय दृष्टि है उसने विसंयोजना कर दी और ये सांसाधन में कैसे आने की बात करते पता नहीं है। तथा दूसरे उत्तर द्वारा आचार्यांतर यानी अन्य आचार्य के अभिप्राय से अनंतानुबंधी का जगन्य काल एक समय स्वीकार कर लिया है जो ऊपर दिखाया ही है। तथा उक्त तीनों प्रकार के जीवों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा होता है और पंचेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उक्त दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल जो तीन पल्लोकों के तीन असंख्यात वे भागों से अधिक 132 सागर बताया है इसका खुलासा पृष्ठ 100 पर कर आए हैं। ये नरक गति में हमने देखा था उसको। और लब्धि अपर्याप्त का उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से उनके उक्त दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। देखो एक इंद्रियों में सम्यक प्रकृति का उदय होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अनंतानुबंधी के बारे में जो कुछ प्रश्नोत्तर चल रहे हैं शासाधन में जा सकता है ऐसा उनका कहना है। जैसे हमने पहले भी शासाधन गुणस्थान में प्रथमोपशम जाता है कि द्वितीयोपशम, तो किन्हीं आचार्यों ने द्वितीयोपशम की बात स्वीकार की, फिर भी वो एक समय में जा नहीं सकता मिथ्या तो में ये भी बात है। यानी एक समय के लिए वो अनंतानुबंधी नहीं था फिर वो कैसे गया दूसरे में, ये बात हमें अचरज लगती है ना। फिर भी उदय है तो वहाँ बंद भी होगा ना, वहाँ तो सत्ता तो मिथ्या तो का नहीं अनंतानुबंधी दूसरे गुणस्थान में बनती है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी बंधेगी, दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति में अनंतानुबंधी को पहले गिनाया, चार अनंतानुबंधी फिर स्थान कृति निद्रा निद्रा पुष्वा पुष्वा। दूसरे गुणस्थान की हमने जो कितनी था अनंतानुबंधी मिथ्यात्व से भी बनती है ऐसा सोचो, क्योंकि जब अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला मिथ्यात्व में गया था तो उसके अनंतानुबंधी तो सत्ता में थी नहीं और फिर मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी बन रही है ऐसा सोचो उसको बंद रही है। अब दूसरे गुणस्थान में मिथ्या तो नहीं है तो अनंतानुबंधी बंद रही है कि नहीं बन रही, बंद विच्छुति दूसरे गुणस्थान में कही है तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व से भी बनती है अनंतानुबंधी से भी बनती है।
तो फिर मानते हैं
तो बन रही है वहाँ पर तो बंदेगी तो एक समय शासाधन में घटित होगा ऐसा
बन रही है ना उदय में नहीं आई इसलिए एक समय तो
बिना उदय के बन रही है। अनंतानुबंधी का उदय हो तो अनंतानुबंधी कषाय होगी ना, वहां मिथ्यात्व के कारण हो रहे थे ऐसा कुछ घोटाला हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है। यानी जैसे मिथ्यात्व में जाने पर बिना अनंतानुबंधी के वो बन रहे थे ऐसे दूसरे में भी समझना मगर ऐसा नियम है जो कोई कषाय बनती है तो उसके उदय के बिना नहीं बनती। अब मिथ्यात्व के मिथ्यात्व से बनती ही है इसका कारण ही मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व अकिंचित करने वालों को तो यही तो पॉइंट है कि वहां अनंतानुबंधी नहीं फिर भी मिथ्यात्व से ही सब बन रहा। दूसरे गुणस्थान में जितनी प्रकृतियां बनती है अनंतानुबंधी के उदय में बनती है तो पहले में भी वो बन रही है ना, तो विषय योजना करके जो आया है उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं है आवली तक और आवली तक ये प्रकृतियां बन रही है तो ये मिथ्यात्व से बनती है। چلو آگے. अनंत अनुबंधी का विषय योजना वाला कैसा आता है पता है?
द्वितीयोपशम वाला
द्वितीयोपशम हो या प्रथम ऑप्शन
हो,
प्रथम ऑप्शन में तो अनंत अनुबंधी की सत्ता है तो वहां घटित होता है, परंतु 24 की सत्ता वाला ऐसे उन्होंने खास बताया. द्वितीयोपशम ऐसा कहते तो द्वितीयोपशम में दोनों जीवों को स्वीकार किया, कहीं कहीं 28 की सत्ता वाले को भी लिया, तो वो जीव तो समझो हम कह सकते कि आता है उनके उपदेश के अनुसार, परंतु 24 की सत्ता वाला बता गया है ना ऊपर भी यही है क्या? 24 संत कम्य वो समय सम्मा दिठी
सत्ता नहीं है और पीछे एक सभी के लिए गठित सभी के लिए एक सभी के लिए एक सभी गठित करता है ना,
परंतु वो कैसे आएगा शासन जिसके अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं है? अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, जिसके तीसरे गुणस्थान में हो सकता है कि अनंतानुबंधी की 24 की सत्ता वाला, और हम बार बार कहे कि शासन वाला 28 की ही सत्ता वाला होता है, तो 28 की सत्ता बाद में हो जाती है, वहां आने पर बनती है ऐसा लेना, 24 में से वो 28 हो जाती है ऐसा समझना चाहिए थे. यानी वो परिणाम ऐसे हो गए और उसने बांध लिया तो सत्ता में आ गए. तो मैं परिणाम बिगड़ने का कारण क्या है ऐसा हम सोचते हैं, यानी निमित्त रूप से उसमें कौन से कर्म लेना था? ये प्रश्न कभी अनसॉल्व रहता है. चलो आगे 126 पॉइंट. एक काय मार्गणा की बात अभी यहाँ शुरू हो रही है. पृथ्वी काय आदि चार कायों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य काल एक समय, ये तो समझ सकते हैं ना. अब एक इंद्रियों की अपेक्षा बात नहीं करनी, अभी काय विशिष्ट काय में रहने का काल लेना और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात वे भाग है तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है. जो हमने बादर एक इंद्रियों में सूक्ष्म एक इंद्रियों में लिया, तो यहाँ काय इतना ही लिया है. जब पृथ्वी काय कर जब काय लिया ना पृथ्वी आदि चार कायों में, तो वनस्पति में रहने का उत्कृष्ट काल कितना होगा? वनस्पति में निगोद आ गई कि दाई पुद्गल परिवर्तन. तो यहाँ पृथ्वी काय लिया तो उसमें बादर भी आए सूक्ष्म भी आए, तो सूक्ष्म में ही लगातार रहने का काल असंख्यात लोक है. बादर में जब हम कहते हैं बादर पर्याप्तों में, तो संख्यात वर्ष हो जाते, संख्यात हजार वर्ष. तो यहाँ दो प्रकृतियों की बात करेंगे तो पल्ले का असंख्यात होगा, और अन्य सभी प्रकृतियों के लिए वहां रहने का उत्कृष्ट काल अगर गिनना है तो असंख्यात लोक प्रमाण. बादर पृथ्वी काय आदि चार बादर कायों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल पृथ्वी काय आदि चार कायों के समान है, यानी जघन्य काल एक समय, तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है. किसमें? बादर कायों में. यानी बादर पृथ्वी का है, बादर जल का है आदि. बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि चार बादर काय पर्याप्त जीवों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जघन्य है ना, बादर है, पर्याप्त है, किसी भी काय में हो. बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों का जघन्य काल कितना है? अंतर्मूर्त. वो यहाँ देखना। और सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, जैसे हमने बादल पृथ्वी का एक पर्याप्तों में 22,000 वर्ष है, वैसे अन्य में भी जैसे वनस्पति का एक पर्याप्तों में 10,000 वर्ष है, तो सभी की भी बात अलग अलग, तो संख्यात हजार वर्ष होगी। बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त आदि चार बादर का अपर्याप्त जीवों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य काल एक समय, ये तो एक समय भी हम समझ सकते हैं। अन्य कायिकों में से इसमें आए, वहां उद्वेलना की थी, अभी यहाँ एक समय में उद्वेलना पूरी। और शेष प्रकृतियों का जगन्य काल कृता बहुग्रहण प्रमाण है, क्योंकि अपर्याप्तों की बात चल रही है। तथा सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी उसी काय में उसी अपर्याप्तों में लगातार रहे, हमने देखा ना 6012 भोग करे तो भी तो अंतर्मूर्त ही हो जाता है। सूक्ष्म पृथ्वी काय आदि चार सूक्ष्म काय जीवों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग है। और शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण। हमने सूक्ष्म केंद्रियों का देखा था असंख्यात लोक प्रमाण, तो यहाँ काय प्रगटित करे सूक्ष्म काय वालों के। सभी सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के सभी प्रकृतियों का काल सूक्ष्म कायिक जीवों के समान ही कहना चाहिए। इतनी विशेषता है, उक्त चार प्रकार के सूक्ष्म पर्याप्त जीवों के 26 प्रकृतियों का जघन्य काल और 28 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अकेले पर्याप्त या अकेले अपर्याप्त लेंगे तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है, और दोनों को मिलाकर ले लेंगे तो हमने देखा था असंख्यात लोक प्रमाण का विशेषा। ऊपर पृथ्वी कायिक आदि चार तथा उनके भेद प्रभेदों में 28 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया है। उत्कृष्ट में असंख्य पुल्य के असंख्यात भाग। सर्वत्र सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय है, यह तो स्पष्ट है। तथा जहां विवक्षित काय का उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग से अधिक है, वहां सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग होता है। और जहां विवक्षित काय का उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात भाग से कम है, जैसे हमने बादर कायिक देखे तो संख्यात हजार वर्ष होते, तो वहां उत्कृष्ट रहने का संख्यात हजार वर्ष है, वही सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कम है, वहां उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल कम होता है। तथा शेष 26 प्रकृतियों का काल कहते समय जिस काय का जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो उतना उन प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। ये शेष 26 के बारे में जो ऊपर बताया ही है। ऊपर बादर पृथ्वी काय आदि के 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति प्रमाण बताया है, सो इससे मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर का ग्रहण करना चाहिए। जब कर्म स्थिति प्रमाण कहा है 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल, यानी उस कायिकों में रहने का उत्कृष्ट काल, बादर कायिक आदि में रहने का उत्कृष्ट काल, ये बादर पृथ्वी कायिक की बात है। परिकर्म में कर्म स्थिति से भव स्थिति ली गई है, इसलिए यहाँ कितने ही आचार्य कर्म स्थिति से बादर एकेंद्रियों की उत्कृष्ट भव स्थिति असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का ग्रहण करते हैं, पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। भव स्थिति का अर्थ क्या है और कर्म स्थिति, कर्म ने कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो मोहिनी कर्म में 70 कोड़ाकोड़ी सागर होते हैं, और भव स्थिति ने उस भव में रहने का उत्कृष्ट काल, तो कितना हो सकता है। अभी हमने देखा था अंगुल का असंख्यात भाग, जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी होती है, तो ये असंख्यात का प्रमाण यहाँ कितना है, तो असंख्याता संख्या जब असंख्यात पुद्गल परिवर्तन की बात की थी एकेंद्रियों के लिए, तो उस असंख्यात का प्रमाण कितना था, तो आवली के असंख्यात विभाग वाला। और यहाँ जब असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कहते तो उस असंख्यात का प्रमाण कितना है, असंख्याता संख्यात। असंख्याता संख्यात कैसे निकलते हैं, आवली का असंख्यात अभाग यानी जगन्य युक्ता संख्यात का असंख्यात अभाग। असंख्याता संख्यात कैसे निकलती है संख्या, कौन सा असंख्यात, कौन सा असंख्यात
नहीं,
देखो युक्ता संख्या जो है, परिता संख्या से युक्ता संख्या कैसे निकाला, तो जगन्य परिता संख्या रेस टू जगन्य परिता इज इक्वल टू युक्ता संख्या। परंतु असंख्याता संख्यात निकालने के लिए क्या करना है, केवल वर्ग करना है। युक्ता संख्या जगन्य युक्ता संख्यात मल्टीप्लाइड बाय जगन्य युक्ता संख्या इज इक्वल टू जगन्य असंख्याता संख्या। अब ये जगन्य ऐसा नहीं है, कोई भी यथा योग्य असंख्याता संख्यात है, कोई मध्यम भेद होगा, तो यानी ये बहुत बड़ा असंख्यात है। तो कहते हैं ऐसी भवस्थिति यहाँ ग्रहण नहीं करनी है, यहाँ कर्म स्थिति यानी सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर लेना, क्योंकि सामान्य बादर जीव का जो भवस्थिति काल कहा है वही बादर पृथ्वी का एक आदि का नहीं हो सकता। तथा सूत्र ग्रंथों में सामान्य बादर जीव की भवस्थिति असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण कही है, और बादर पृथ्वी का ही आदि की भवस्थिति कर्म स्थिति प्रमाण कही है। क्या कहना चाहते हैं, जब सामान्य बादर कहेंगे, सामान्य बादर कहेंगे तो तभी सभी बादर का ही आ गए उसमें
पृथ्वी।
सामान्य बादर कायिक की बात है, कायिक कायिक काय के लिए बादर कायिक है सभी, वो पर्याप्त पर्याप्त भले हो, परंतु उसमें सामान्य कायिक जब कहे तो पृथ्वी काय है कि वनस्पति काय है कि जल काय, ऐसा भेद किए बिना सामान्य बादर जीव कितने काल तक रहते हैं, तो उसके लिए वो अंगुल का असंख्या का भाग रहा है, उसको वो बादर जीवों की भवस्थिति कहेंगे, जिसको हम बादर एकेंद्रीय कहेंगे, उसमें सभी स्थावर काय आ गए। परंतु यहाँ एक एक काय की अलग अलग बात कर रहे हैं, अकेले बादर पृथ्वी कायिक में या अकेले वनस्पति कायिक में, अकेले वनस्पति को या नहीं लिया वायु कायिक में रहने का काल पूछ रहे हैं, तो वो कितना होता है, तो कर्मस्थिति चार कायिक में अलग 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 किसी एक काय में रहने का उत्कृष्ट काल, वो भी बादर में, वो भवस्थिति प्रमाण है, ये सॉरी कर्मस्थिति प्रमाण है। इस प्रकार इन दोनों की भवस्थिति जब भिन्न भिन्न दो प्रकार से कही है, यानी सामान्य कायिक सभी सभी स्थावरों में मिलकर अभी जब कहा है बादर स्थावर काय, बादर स्थावर सभी एक साथ, तो उसमें तो अंगुल का संख्या दबा होगा, और एक एक अलग अलग काय में कितना है, तो ये कर्म स्थिति का वही उसकी भवस्थिति है। नहीं समझे, अकेले पृथ्वी कायिक की बात है, वो संख्यात हजार वर्ष देखा था बादर पृथ्वी कायिक ने, अब यहाँ क्या कहते हैं,
चारों में एक बादर पृथ्वी का एक आदि चारों
आदि चार चार का इकट्ठा सामान्य बादर में पर्याप्त पर्याप्त दोनों भी। सामान्य बादर जीव की भवस्थिति असंख्याता साक्षात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, वहाँ बादर जीव बादर एकेंद्रीय कहा था, अब यहाँ क्या ले रहे
हैं,
और बादर पृथ्वी काय आदि की भवस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण कही है, अलग अलग में लेना, अलग अलग काय वाले लेना, मैं जब कहेंगे तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए उसमें, और वहां अकेले पर्याप्तों की बात की थी, संख्या तजा। नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना संख्या तजा, संख्या तजा किसमें दिए? बादर पर्याप्त में। अब बादर पृथ्वी का एक लेना है, उसमें पर्याप्त भी आए अपर्याप्त भी आए। एक एक काय में रहने का काल। अतः यहाँ कर्म स्थिति से 111 पेज पर मोने की उत्कृष्ट स्थिति का ही ग्रहण करना चाहिए। वनस्पति का एक को छोड़ा था ना, अब इसको लिया। वनस्पति का एक जीवों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात भाग है, क्योंकि वनस्पति कायिक में रहने का उत्कृष्ट काल अधिक हो सकता है ना, कितना हो सकता है? ढाई फुट गर्भ। सभी वनस्पति कायिक में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होंगे। हाँ, तो यहाँ वनस्पति कायिक की बात चल रही है, वनस्पति कायिक में निगोद की मुख्यता है। तो उस अपेक्षा से अगर हम कहेंगे तो वनस्पति कायिकों में अन्य पर्याप्त अपर्याप्त और निगोद और प्रत्येक सबको ले लेंगे तो वो असंख्यात हो जाएगा। तो वनस्पति कायिक जीवों के समय प्रकृति समय मिथ्यात्व का जगन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्व भाग है, तथा शेष 26 प्रकृतियों का जगन्य काल खुदा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। बादर वनस्पति कायिकों के सभी प्रकृतियों का काल बादर एकेंद्रियों के समान जानना चाहिए। बादर एकेंद्रियों में जैसे हमने देखा था जगन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट, बादर एकेंद्रियों में अंगुल का संख्या तथा बादर वनस्पति का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त जीवों के सभी प्रकृतियों का काल बादर एकेंद्रिय पर्याप्त और बादेन्द्रिय एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के समान जानना चाहिए। सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीवों के सभी प्रकृतियों का काल सूक्ष्म एकेंद्रियों के समान होता है, और बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवों के सभी प्रकृतियों का काल बादर पृथ्वी कायिक जीवों के समान होता है। क्या क्या सूक्ष्म एकेंद्रियों के समान, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों में जो बात है तो उसमें सूक्ष्म वनस्पति भी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, पांचों सूक्ष्म जीव, पांचों सूक्ष्म जीव आते हैं, परंतु वो उसका समान है। सूक्ष्म वनस्पति का एक तो निगोद ही होते हैं, तथा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों के सभी प्रकृतियों का काल बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त और बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त जीवों के समान होता है। अब विशेष अर्थ बताए हो गए, चलो फिर ठीक। ये वनस्पति का एक उनकी फिर बात हम विशेष अर्थ लेके फिर दोबारा उस पर आ जाएंगे 11 तारीख को। जावाणी के ज्ञान तैं